ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर आज सदन में हंगामा किया, जिसके कारण दो बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा जारी रखा। कई विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तख्तियां लहरा रहे थे और कुछ सदस्य आसन के समीप आ गए। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि सदन में आज गोवा के आदिवासी समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होनी है। लोकसभा की आज की कार्यसूची में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 सूचीबद्ध था। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन में हमने बेशकीमती समय गंवाया है, विधेयक पर चर्चा होने दें, आप इस तरह तख्तियां नहीं लहरा सकते। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद ऐसा लगता है कि विपक्षी सदस्य गोवा के एसटी अनुसूचित जनजाति समुदाय पर कोई चर्चा नहीं चाहते, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले मॉनसून सत्र के तीसरे दिन पूर्वाह्न 11 बजे निचले सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। विपक्षी सांसदों ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराईं। उन्होंने बिहार में एसआईआर की कवायद, पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर को रोकने और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों समेत कुछ विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। सदन में शोर शराबे के बीच ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रश्नकाल के दौरान कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि संसद और संसद परिसर के अंदर आपका व्यवहार, आचरण और कार्यपद्धति मर्यादित होनी चाहिए। देश की जनता ने आप लोगों को अपनी आवाज, जनता की कठिनाई, चुनौतियां, देश से जुड़े मुद्दों और नीतियों पर चर्चा के लिए भेजा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है, आपसे मेरा आग्रह है कि संसद और संसद परिसर के अंदर आपका व्यवहार, आचरण और कार्यपद्धति मर्यादित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सड़कों पर आचरण व्यवहार संसद में कर रहे हैं, देश ये देख रहा है। आप जिन राजनीतिक दलों से हैं उनके नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश उनके सदस्यों के आचरण और कार्यपद्धति को देख रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप माननीय हो और माननीय जैसा व्यवहार करो। उन्होंने ये चेतावनी दी कि मुझे सदन में तख्तियां लेकर आने वाले सांसदों पर निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने करीब 11:10 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे सदन की बैठक पुनः शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागजात सदन में प्रस्तुत कराए। इस बीच विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन सभापति संध्या राय ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन की कार्रवाई चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप सभी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन की गरिमा मर्यादा को समझते हैं और विपक्ष की भूमिका जानते हैं। उन्होंने प्रश्नकाल में हुए व्यवधान का उल्लेख करते हुए कहा कि आज लगातार तीसरे दिन शोर शराबे के कारण रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न नहीं पूछे जा सके। राय ने कहा कि पूरा देश आपको देख रहा है, सरकार आपके उठाए गए विषयों पर चर्चा चाहती है। हंगामे के बीच ही खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 सदन में पेश किए। शोर शराबा समाप्त नहीं होने पर पीठासीन सभापति ने बैठक 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। मनसुख मांडविया ने खेल से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई समेत राष्ट्रीय खेल संघों के कामकाज पर निगरानी रखने और उनके लिए नियम बनाने के लिए एक बोर्ड के गठन के प्रावधान वाला राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 सदन में पेश किया। इसमें पारदर्शिता के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का प्रावधान है। सभी एनएसएफ को केंद्र सरकार से वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड एनएसबी की मान्यता प्राप्त करनी होगी। विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक पुनर्स्थापित करते हुए मांडविया ने कहा कि ये विधेयक खेलों के विकास और संवर्धन, ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने और खेल विवादों के समाधान के लिए लाया गया है। विधेयक में एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान है, जिसके पास एक दीवानी अदालत के अधिकार होंगे और वो संघों और खिलाड़ियों के चयन और चुनाव से संबंधित विवादों में फैसला लेगा। न्यायाधिकरण के निर्णय को केवल उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2036 से संबंधित बोली लगाने की तैयारियों के एक भाग के रूप में ये आवश्यक है कि खेल प्रशासन परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन हो, जिससे बेहतर परिणाम, खेल उत्कृष्टता और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन में सहायता मिले। इस विधेयक के कानून बनने के बाद सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संस्थाएं भी सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के दायरे में आएंगी, जिसका बीसीसीआई ने कड़ा विरोध किया है क्योंकि वो सरकारी धन पर निर्भर नहीं है। खेल मंत्रालय का कहना है कि 2028 के लॉस एंजल्स गेम्स रोस्टर में क्रिकेट को शामिल किए जाने के बाद से ओलंपिक का हिस्सा होने के चलते बीसीसीआई को विधेयक के अधिनियमित होने के बाद इसके प्रावधानों का पालन करना होगा। एनएसबी में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे। हितधारकों और सार्वजनिक इनपुट के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए मसौदा विधेयक के अनुसार ये नियुक्तियां एक खोज सह चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी। चयन समिति में कैबिनेट सचिव या खेल सचिव अध्यक्ष होंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक, दो खेल प्रशासक जो किसी राष्ट्रीय खेल निकाय के अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हों, और एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी जो द्रोणाचार्य, खेल रत्न या अर्जुन पुरस्कार विजेता हो सदस्य के रूप में शामिल होंगे। विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि खेल निकायों के प्रशासन में सुधार लाने, खेलों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने तथा खेल महासंघों से जुड़े विवादों और मुकदमों को कम करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विधेयक में राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल का भी प्रावधान है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व सदस्य, राज्यों के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी या उप निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी निचले सदन में पेश किया। उक्त विधेयक में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के सुझावों के मुताबिक संशोधन शामिल किए गए हैं। ये विधेयक मूल रूप से 2022 में पारित किया गया था, लेकिन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की आपत्तियों के कारण इसके कार्यान्वयन को रोकना पड़ा था। विश्व संस्था ने खेलों में एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड के गठन पर आपत्ति जताई थी, जिसे डोपिंग रोधी नियमों के लिए सरकार को सिफारिश देने के अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव था। बोर्ड में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्यों के शामिल होने का प्रस्ताव था और इसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा पर निगरानी रखने और इसे निर्देश देने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया था। वाडा ने इसे एक स्वायत्त निकाय में सरकार का हस्तक्षेप करार देते हुए खारिज कर दिया था। संशोधित विधेयक में बोर्ड के प्रावधान को रखा गया है, लेकिन उसे नाडा पर निगरानी रखने या परामर्श देने का अधिकार नहीं होगा। सदन में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरिधारी यादव ने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में बिहार को एक भी नई ट्रेन नहीं मिली, जबकि केंद्र में राजग की सरकार लाने में इस प्रदेश की बड़ी भूमिका है। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार के लिए 5 नई अमृत भारत रेलगाड़ियां चलाई हैं। बिहार के बांका से लोकसभा सदस्य यादव ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि केंद्र में राजग सरकार लाने में बिहार की बड़ी भूमिका है। क्या रेल मंत्री बताएंगे कि उन्होंने पिछले 11 साल में पटना से दिल्ली और पटना से बेंगलुरु के बीच कोई ट्रेन शुरू की है? इसके जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 अमृत भारत ट्रेन शुरू की है, इस ओर प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है। अमृत भारत एक ऐसी ट्रेन है जो गरीब से गरीब वर्ग को भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। वैष्णव ने कहा कि बिहार में 11 वर्ष पहले सिर्फ 1132 करोड़ रुपए का आवंटन रेल परियोजनाओं के लिए होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए रेलवे के बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सोनी। राज्यसभा में भी आज विपक्ष के भारी विरोध और नारेबाजी के कारण कार्यवाही फिर पूरी तरह ठप रही। बिहार में SIR, ऑपरेशन सिंदूर और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग ने सदन को स्थगन की ओर धकेल दिया। सरकार और विपक्ष के बीच तनाव के कारण महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो सकी। ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी गई। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में चुनाव के लिए संसदीय विधान के तहत प्रस्ताव रखा गया और विपक्ष के हंगामे के बीच ही उपसभापति हरिवंश ने लोकसभा से पहले ही पारित पोत पत्तन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से दो विधेयक राज्यसभा से पारित की मंजूरी के लिए पटल पर रखवाने में सफलता पाई। राज्यसभा की कार्यवाही आज हंगामे और स्थगन के नाम रही। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। उपसभापति हरिवंश की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। बिहार में मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान के विरोध में डटा रहा। विपक्षी विरोध और हंगामे के बीच उपसभापति ने वरिष्ठतम नेताओं में शुमार वाइको को जीरो ओवर में तमिलनाडु के मछुआरों की परेशानी उठाने का मौका दिया। उपसभापति ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से अपील की कि कल वाइको का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उन्हें राज्यसभा में उनके कार्यकाल के आखिरी दिन महत्वपूर्ण सवाल उठाने दीजिए। लेकिन जैसे ही वाइको ने अपनी बात खत्म की, वेल में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी इतनी तेज थी कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों में दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगन की घोषणा उपसभापति हरिवंश ने कर दी। सदन की कार्यवाही 12 बजे दोबारा शुरू हुई, मगर स्थिति नहीं सुधरी और सदन को दोपहर 2 बजे और अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि यह प्रक्रिया आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं, विशेष रूप से आदिवासियों, दलितों, पिछड़े वर्गों और मुसलमानों के मताधिकार को प्रभावित करने की साजिश है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, SIR के जरिए कुछ खास समुदायों को वोटिंग अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग की। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत चर्चा के लिए समय बढ़ाने पर सहमति बनी। पहले इस मुद्दे पर 9 घंटे की चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 16 घंटे कर दिया गया है। ये चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से तय की गई। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा 29 जुलाई को तय की गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद तय परिपाटी के अनुसार राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्होंने नियम 267 के तहत 25 नोटिस प्राप्त किए, जिनमें बिहार में SIR, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी तोड़े जाने, बंगाली प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव और हवाई सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की मांग शामिल है। इस मांग में कांग्रेस, सपा, राजद और आम आदमी पार्टी के सांसदों का नाम शुमार था, लेकिन उपसभापति ने नियम का हवाला देते हुए 267 के तहत चर्चा को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी सांसद सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। उपसभापति हरिवंश ने वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर कलिता को उपसभापतियों के पैनल में शामिल करने की घोषणा की। दोपहर 2 बजे से राज्यसभा की कार्यवाही नवनियुक्त उपसभापति भुवनेश्वर कलिता ने संचालित की। उन्होंने AIADMK संसदीय दल के नेता डॉ एम तम्बीतुरई को जनहित के मामले उठाने का मौका दिया, लेकिन उनके पास उनकी ही माइक से तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसे भुवनेश्वर कलिता ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करते हुए AIADMK के नेता थम्बीदुरई से कहा कि आप अपनी बात कल विस्तार से रख सकते हैं। विपक्षी नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। राज्यसभा की कार्यवाही आज तीसरे दिन भी लगातार दिनभर बाधित रही और कोई महत्वपूर्ण विधायी कार्य या नीतिगत चर्चा नहीं हो सकी। उपसभापति हरिवंश और नवनियुक्त उपसभापति भुवनेश्वर कलिता ने बार बार विपक्षी सांसदों से शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई चलाने की अपील की, लेकिन भारी हंगामे, नारेबाजी और वेल के अंदर विरोध प्रदर्शन के कारण उच्च सदन की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही अब कल सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।